ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदवक्ताय नमो नमः। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय माम चरणान्तिके। अङ्गच्छामलिं छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरं जड्डञ्जागुडरोचि सङ्गविदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसद्दामाभिरामोदरम् राधा स्कंदी निवेशित जल भुजम आज एकादशी तिथि एकादशी तिथि मध्य विशेष करे उत्थान एकादशी और तार मध्य विशेष ए तिथि के अवलंबन करे श्रील गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज नित्य लीला ते प्रविष्ट होइ छे। गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज पूर्व बांगलाते कोथाउ आविर्भूत होइछिलेन। तिनी तार वंशे जन्मस्थान और किछुइ तिनी परिचय देन नाइ कोथाउ। तिनी किशोर अवस्थाते वृंदावने आसेन एवं वृंदावने ब्रजमंडले विभिन्न स्थाने ते तिनी बास करे भजन करे छिले। तिनी कखनो वृंदावने कखनो राधा कुंडे कखनो गोवर्धने कोथाओ कखनो सूर्य कुंडे ते तिनी थाकते। जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज तार शिक्षा गुरु छिलेन। जगन्नाथ दास तार शिक्षा गुरु छिलेन। गुरु जे की के मने नाय तिनी ओय मसूदन दास बाबाजी महाराज और जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज संगे बहुत दिने ओखाने बास करेछिलेन। अत तीव्र वैराग्य जे तिनी खिधा लागले जिह्वा नाना प्रकारे स्वादिष्ट जिनिस छे इनी जमुनार माटी राधा कुंडार माटी खे बोले ले तुम बेस सुंदर करे स्वादिष्ट भोजन कर आ तार फले ते तार चोख नष्ट हो जाए। तिनी बहु काल पर्यंत ब्रजे थे के शेषे तिनी नवदीप धामे ते ओखाने ते जिए শেষকালে ওইখানে ভজন করেছিলেন। কৃষ্ণ ধামেতে কৃষ্ণ নামেতে বিচার আছে অপরাধে কিন্তু ওখানে হা গৌর হার নিতাই ডাকলেই নদীপ ধামেতে ধামোদয়ালু আ গৌর নিত্যানন্দ প্রভু দয়ালু, তারা নাম লইলে প্রেম দে বহে অশ্রুধার, এ বন্যায় যে না ভাসে সেই জীব ছাড়, কোটি কল্প জন্মে নাই তাহার উদ্ধার। যারা চৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর আশ্রয় লয় নাই তারা মহাপার্ষণ্ডী, তাদের কোনোদিন উদ্ধার হবে না। তারা জীবকে উদ্ধার করবার জন্যই আবির্ভূত হয়েছে। কৃষ্ণ আর বলদেব প্রভুই হচ্ছেন গৌর নিতাই, এই জন্য তিনি নদীপ ধামে আসেন। আর নদীপ ধামেতে বহু তাহার কথা আছে, বহু কথা আছে। এক সময়তে গুরু মহারাজ সরোজ পিসিমা আর রাম গোবিন্দ ব্রহ্মচারী পূর্বে পরে তিনি নেমি মহারাজ হয়েছিলেন, তারা প্রভুপাদের আদেশ নিয়ে গুরুদেবের আদেশ নিয়ে তাহার দর্শনে গিয়েছিলেন। তখন তিনি পায়খানাতে ভিতরে দরজা বন্ধ করে ওইখানে থেকে ভজন করতেন। বিষয় লোকের দুর্গন্ধ তদপেক্ষা পায়খানা দুর্গন্ধেই তাহার ভালো লাগত। বিষয় লোক আসবে বলবে প্রভু কৃপা কর, এটা বলবে না যে সে কৃষ্ণ ভক্তি হোক, তারা বলবে যে ধন জন পুত্র পরিবার লক্ষ্মী স্ত্রী এইসব প্রাপ্ত, তাহাকে বিরক্ত করত, এই জন্য তিনি ওই পায়খানা রূপে এসেছিলেন। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ অফিসার এসেও তাহাকে ওখান থেকে সরাইতে পারে নাই। তার বাবাজি মহারাজ আপনার জন্য অন্ন ভজন কুটি করে দিস, বুঝলে আমি বেশ ভালো আছি, তো দরজা খুলুন, আমি অসুস্থ আমি খুলতে পারছি। আর যখন আমাদের গুরু মহারাজ ইত্যাদি গেলেন তখন এরা বলে যে বাবাজি মহারাজ দরজা খুলুন, আমি অত্যন্ত অসুস্থ। আমরা প্রভুপাদের সরস্বতী ঠাকুরের অনুগত জন, তিনি কৃপা করে আমাদেরকে নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন আপনার দর্শনের জন্য, এই জন্য এসেছে। ও সরস্বতী ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দিলেন, গুরু মহারাজ তাহাকে প্রণাম করলেন, আরো সব প্রণাম করলেন। গুরু মহারাজ তাহার চরণেতে বললেন যে আপনার কৃপা আমি মাংবার জন্য এসেছি। তেমনি তোমার যাবতীয় জগতের বিপত্তি ভজনের বিপত্তি আমি গ্রহণ করলাম, তুমি নিশ্চিন্ত নির্ভয় হয়ে জগতেতে তুমি প্রচার কর। গুরু মহারাজ এই কথা বলে বলতেন যে আমার উপরে বহু বিপত্তি এসেছে প্রচার করতে গিয়ে, কিন্তু এই মহাপুরুষের কৃপাতে সবগুলি দূর হয়ে গেছে। এরকম হতে বহু কথা আছে। এখন রসানন্দ ব্রহ্মচারী কিছু বলবেন, আরো সব লোক বলবেন, এই জন্য সবটাই বলে দিব না। পাঁচ মিনিট থেকে নেয় দশ মিনিট বারো মিনিট।
Today is Bhutan Ekadasi, and especially this Ekadasi, today is the disappearance day of Sri Gauri Kishnodas Babaji Maharaj. So he appeared in Bangladesh, with which district and in which family he appeared, we don't know anything about that. All we know is that at a very young age he came to Vrindavan and stayed in many, many places here, like Vrindavan, Radhakund, Govardhan, and Sri Srijakund. Especially Sri Jagannatha Babaji Maharaj and Sri Manusudana Babaji Maharaj and Srijakund were his Shiksha Gurus. He exhibited the most extreme form of renunciation. Sometimes he would say, "Oh, Tao, you want to taste very nice preparations? Take this." And he would eat the mud from the Yamuna and from Radhakund. As a result of this, he became blind. He stayed a long time here in Vrindavan. Then in an old age, he went to Navaridham. Because in the names and the Dham of Sri Krishna, there is a conception of Aparad. But in the names of the Dham of Gauri Dhyana, there is no question of Aparad. Nam Gauri, Nam Gauri, Asri, Nam Bahu. By chanting the name of Gauri Nityananda, tears easily pour from the eyes and one achieves prema. Therefore they are even more merciful than Radha and Krishna. Without the mercy of Sri Gauri Nityananda, one can never achieve deliverance from the material existence. And Sri Krishna Balaram came to this world in the form of Sri Gauri Nityananda to deliver all the jivas from material existence. One time our Pada Gurudev, Surat Visiman, Sri Radha Govinda Brahmachari, who after became Sri Pandini Maharaj, they went to see Sri Jagannatha Babaji Maharaj, who had locked himself in the bathroom, in the toilet. That time he was teaching us that the smell of the bathroom is quite nice compared to the smell of the association of materialistic persons. They come and beg, Gurudev, Kripakuru, give mercy, and ask that want material things like money, wealth, and position. Even big people like the police superintendent and the district magistrate would request Babaji Maharaj, "Oh Maharaj, please open the door. We'll make another Bhajan Kutia for you." But Babaji Maharaj said, "I cannot open the door. I am very sick." So our Pada Gurudev and his group, on the order of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, went there for darshan of Srila Gaurishnath Babaji Maharaj. They knocked on the door, "Oh, Babaji Maharaj, please open." "I cannot open, I am sick." No, we are under the shelter of Sri Saraswati Thakur, and he has sent us here to have your darshan. Please be kind. When Babaji Maharaj heard that, immediately he opened the door and gave the blessing. Asked Sri Puram Gurudev, he bowed at the feet of Babaji Maharaj and said, "Please, I am requesting your blessing." So Sri Gaurishnath Babaji Maharaj said, "I take away all the obstacles to your bhajan and you should preach fearlessly." So our Pada Gurudev would remember that and weep and said, "So many problems came in my preaching, but by the blessing of Sri Babaji Maharaj, they could not affect me at all." Gaurakai Manu Mandi. Dear Bhakti.
Disappears. 10 minutes.
Oh my God, Divyam Vista, Jnananjana Salakaya, Sashur Militam Dina, Tasmai Sri Gurave Namah, Gurave Gaura Chandraya, Radhikaya Istadalaya, Krishnaya Krishna Bhaktaya, Tad Bhaktaya Namo Namah. Namo Gauru Viswaraya Sakshat Vairagyam Murtaye Vipralam Gaura Sampati Padambujaya Namo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare Hare Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Mr. Abhrata, Hari Gurudev, Nitalika, Parvishma, Vishnupad, Ashroda, Shabastri, Srisrimad, Bhakti, Sridhu, Siddhanti, Goswami, Maharaj, Pacharana, Babalami, Anantopati, Sashra, Dhanuva, Pranam, Gatcham. Tatpastat, Hari Sikha, Gurudev, Paripraj, Ajar, Jitata, Vishnami, हम लोग पालना करने जा रहे हैं। महाराज अगर किसी वृक्ष को समझ ना तो कहते फले ना परिचय दे, उसका फल के द्वारा ही वृक्ष का परिचय पता चलता है। इसलिए ये वृक्ष का फल कौन है, कहते वृक्ष का फल कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये वृक्ष का फल साक्षात महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था पृथ्वी से आशीर्वाद प्रदान का सर्वत्र प्रचार है विवरणा। यद्यपि यह वाणी को महाप्रभु जी को द्वारा जितने जगत में प्रचार प्रसार कर किया उन लोग नहीं किया, लेकिन भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहा करते थे जब अभी तक इतने सारे आचार्य आए हैं, सारे आचार्य का वैशिष्ट उनका प्रचार प्रसार को अगर एक तरफ में रख दिया जाए, अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का प्रचार प्रसार भजन को अगर एक ही रख दिया जाए तो प्रभुपाद का जो पल्ला है देखने को शिवा जा रहा है। इसलिए ऐसे महापुरुष आए जो महापुरुष संपूर्ण पृथ्वी में अभी जो महाप्रभु का नाम गुण महाप्रभु का नाम सर्वत्र प्रचार प्रसार हो रहे हैं, विश्व ब्रह्मांड के लोग भक्ति विनोद ठाकुर का जो भविष्यवाणी था एक दिन ऐसे आएगा काले और गोरे लोग एकत्रित होकर के श्रीमान नित्यानंद महाप्रभु का नाम को लेते हुए हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करते हुए एक दिन सब मिलकर के निताई गौर प्रेमानंद यह जो वाणी है कर संपूर्ण रूप में जो प्रभुपाद ही मुक्त प्रग्रह वृत्ति को द्वारा विवेचना किया जाए तो संपूर्ण रूप में उन्होंने ही सार्थक किया है और उनको शिष्य प्रशिष्य को द्वारा श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज और उसी कड़ी में हमारे महाराज जी भी संपूर्ण विश्व में महाप्रभु का वाणी को प्रचार और प्रसार किया। ऐसे महापुरुष ये वृत्ति का फल है। तब अगर समझिए जो भक्ति सिद्धांत के साक्षात नयन महिमा देवी और जिनको जिन्होंने जिनको पास में दिखा दे जाने जाने पर जिनको कितना बार पता नहीं उन्होंने प्रत्याख्यान कर दिया मैं महाप्रभु को पूछूंगा आज पूछना भूल गया कल आना, पता नहीं कितना कष्ट से इनको चरण में उन्होंने आत्मसमर्पण किया है, कितना कष्ट से लास्ट में भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कि बच्चे को क्या मार डालोगे, इसलिए बच्चा तो खराब ना छोड़ दिया अगर आप दीक्षा नहीं लोगे तो बड़े कठिन से उन्होंने उनको स्वीकार किए, तो समझिए तो महापुरुष कितने बड़े हुए। इसलिए इनका मंत्र नहीं तो प्रभुपाद इनकी महिमा को बता रहे थे कहते नाम और गौर ईश्वराय साक्षात वैराग्य मूर्ति, इनको बताया कि साक्षात वैराग्य की प्रतिमूर्ति है। कहते महाप्रभु को भक्ति में कहते महाप्रभु जगत में क्या शिक्षा देने के लिए आए, कहते वैराग्य विद्या भक्ति योग शिक्षा एकम पुरुष पुराण श्री भगत सर्व मंडलाचार्य कहते हैं उन्होंने वैराग्य विद्या भक्ति योग को शिक्षा देने के लिए आए और महाप्रभु कहते हैं महाप्रभु भक्त जन वैराग्य प्रधान जहां देखे तुष्ट है गौर भगवान, इसलिए उन्होंने वैराग्य इनके जीवन में दो तरह से ये वैराग्य देखने को मिलता है। साधारण रूप में जो वैराग्य है इसलिए सुखदेव गोस्वामी भागवत का द्वितीय स्कंध में बताए कि एक निष्किंचन अगर संपूर्ण रूप में भगवत के चरण में शरणागत होकर के भजन करना चाहते हैं वो संपूर्ण रूप में भगवान का दिया हुआ स्वाभाविक रूप में जो वस्तु मिल जाए उसको स्वीकार करके जथा लाभ संतुष्ट होकर के भजन करनी चाहिए। तो उन्होंने वहां प्रश्न किया तेरे भूख लगे तो तेरे भगवान का प्रेम का सृष्टि नहीं किया, तेरे स्वयं ने कहा तेरे भगवान का प्रकृति बनाया, तेरे बगैर तकिया अगर नींद नहीं आएगी तेरे भगवान के हाथ क्यों दिया, तेरे पानी कहाँ पिएंगे तेरे भगवान की दिशा नदियों को सृष्टि की है, तेरे स्वयं ने कहा घर पे जाइए तेरे भगवान का कदरा नहीं बनाया, तेरे पानी जो पिए तेरे पात्र चाहिए तेरे भगवान अंजलि दिया, तेरे पहनने के लिए कपड़ा तो चाहिए ना, तेरे किसने फेंक दिया होगा कपड़ा तो चाहे पहन लो ना, किसी तरह से लज्जा तो निवारण करना है। अगर अगर ऐसे किसी रूप में किसको ऊपर में बिना अपेक्षा किए हुए भगवत इच्छा से स्वाभाविक रूप में जो मिल जाए उसको लेकर के एक साधारण साधक उसको भजन करनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जब तो देखो वैष्णव व्यवहार दो निश्चित परामर्श साधारण रूप में वैष्णव को साधारण कपड़ा पहन करके तीन ही होकर जो भजन कर रहे हैं इसका मतलब है कुछ मिलने आए इस भजन कर रहे हैं नहीं। तब ये भगवत भक्ति करने के लिए साधारण रूप में हाँ भाव होकर जो भक्त है साधारण रूप में किसी तरह से ये जीविका निर्वाह करके ज्यादा से ज्यादा समय हम भगवान की भक्ति में व्यवहार करें प्रभु का भजन में लगाए। इसलिए वैष्णव लोग साधारण रूप में अपना परिचर को सीमित करते हुए भजन करना चाहते हैं। महापुरुष का जीवन में ये जो प्रयाग है आप लोगों ने श्रवण किया किसी ना किसी तरह से नाव को अंदर में एक छोटी सी बार उसको मेरा याद करें किसी ना किसी तरह से पायखाना को अंदर में किसी ना किसी तरह से रह जाते थे। लोग जो स्वाभाविक रूप में सब्जी को फेंक देते थे उसको ही ला करके किसी ना किसी तरह से खा करके अपना भजन साधन करते थे। इसलिए इनके जीवन में कभी ये वैराग्य कभी वैराग्य दूसरा आपने क्या है कभी विशेष पूर्वक अनुराग है कभी महापुरुष के अंदर में विशेष पूर्वक जो अनुराग है ये अनुराग रंग में रंगते हुए हम लोग ने श्रवण किया कभी ब्रज मंडल में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जो कीर्तन गाते थे वो था वो प्रेममयी राधे राधे तो था पवन डाके वृंदावने पवन डाके निधुवने पवन डाके राधा कुले को था वो प्रेममयी राधे राधे। ये जो कीर्तन रघुनाथ दास गोस्वामी का बड़ा प्यारा कीर्तन है कृष्ण का नाम को लेकर के अत्यधिक विरह में व्याकुल होकर के गोरा मुह जो कीर्तन नरोत्तम ठाकुर का इनका बड़ा गया था गोरा मुह नाभ दिया मैनु प्रेम रतन धना हिलाए हरायु ये भजन उनको बड़ा प्यार था। ये भजन में व्याकुलित होकर के सर्वत्र उन्होंने प्रजा सर्वत्र भगवत भक्ति रस में डूबते रहे। फिर जब नवद्वीप में गए वहां पर भी नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का नाम को लेकर के विरह में निकाय बहुत प्रमाण से बोलते हुए सर्वत्र उन्होंने नित्यानंद महाप्रभु का नाम उन्होंने लिया हम लोग को शिक्षा दिया कि नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का नाम में कोई अपराध का विचार नहीं। इसलिए बोले नित्यानंद चैतन्य बोले नाचे हमार मन एवं दयाल के आचरे मार के प्रेम दे पावन प्रेम भर। यदि महापुरुष कभी कभी इनको कोई शिष्य था आगे बोलता था गुरुदेव मेरे ऊपर में आप कृपा करो हर समय बोलता था मेरे ऊपर में कृपा करो लेकिन उनको पता है वास्तव रूप में वैष्णव जो कृपा करते हैं कैसे कृपा करते हैं बोले रोज रोज आकर बोलते कृपा करो कृपा करो कृपा लो कृपा लेना चाहते हो लो इतने में अपना डोर को पंखुड़ी खोल करके बोले लो कृपा लेना चाहिए कृपा लो जब अपना डोर को फिर देख करके बोले कृपा लो कृपा मतलब क्या है हाँ वैष्णव के पास में आके बोलते कृपा लो कृपा मतलब क्या है संपूर्ण रूप में वो जिस रस में डूबे हुए हैं जिस भक्ति भाव में शराब हो रहे एक दिन उसी रस भक्ति में हमें डुबाते ही कृपा कृपा ये नहीं हमें कृपा करो हम जीव जंतु को लेकर संसार में मस्त रहेंगे ये उनका कृपा नहीं है उनका संपूर्ण कृपा है मैं जिस रस में डूबा हूँ उसी रस में डूबो। इसलिए कौपीन लो और ले संपूर्ण विषय को छोड़ो छोड़ कर मेरे जैसे फैसले करो यही उनका असली कृपा है। इसलिए जब उनको देने के लिए गए बार बार भगे फिर दो बार उधर आए नहीं ऐसे ही कोई शिष्य था शिष्य ने साधनी करके बाबा महाराज के पास में आए बोले गुरुदेव मैं एक कृष्ण दासी लेकर मैं आई आया हूँ कृष्ण दास को लेकर बोले कृष्ण दासी लाए हो बहुत अच्छी बात है देखो ये तुम्हारा दासी नहीं ये किसका दासी है ये कृष्ण का दासी है इसलिए रोज इनको चरण धोना और उनको अर्चना पूजा करके उनको चरणामृत ग्रहण करना खबरदार इसको ऊपर में कभी भोग नहीं करना, क्योंकि ये कृष्ण दास ही तुम्हारा दास ही नहीं, कृष्ण दास ही, इसलिए भोग मत करो उसको मारो। इसलिए यदि छोटे बात में बड़े गंभीर और भक्ति के बड़े रहस्यपूर्ण बात बताया करते थे, जो एक साधन के जीवन में एक साधन की उपयोगी है। और इनकी जो क्रिया महाराज जी कहते हैं प्रभुपाद का क्रिया में कुछ कुछ ऐसे लगता है जैसे कुछ उल्टा है। कहते कैसे, तो महाराज बता रहे हैं गौरक्षर दास महाराज प्रभुपाद को बताए थे, बोले देखो खबरदार कलिका मत जाना, वो कलिका राजत्व है, कलिका स्थान है। लेकिन प्रभुपाद बाद उन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम उन्होंने कलकत्ता में अपना आश्रम खोले और बागोजार रोजा पर विशाल मंदिर स्थापन की। कभी ये तो गोविंदा द्वारा मना किया था, उन्होंने फिर ऐसे काम क्यों किया, नहीं फिर गुरुदेव का जो हृदय है, गुरुदेव का जो भावना कभी शुद्ध भक्त का हृदय में स्वतः प्रस्फुटित होता है। गुरुदेव का क्या आविष्ट है, गुरुदेव का अभिष्ट है श्री चैतन्य अभिष्टम स्थापित जैन भूतले स्वयं रूप गुरुवार का ऐसा है। क्या ऐसा है, महाप्रभु का जो आदेश एक दिन ऐसे हो पृथ्वी भैया लोग दायरे में कृति, एक दिन यही हो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड कृष्ण प्रेम में डूबते हुए सरावर हो जाएंगे, भगवान का नाम को ग्रहण करे, यही गुरुवार की इच्छा है। इसलिए जो प्रभु गोविंदास की इच्छा सर्वत्र भगवत नाम प्रचार हो। एक दिन महाराज जी बोल रहे थे अगर इसी समय में गुरुदेव रहते, जब गुरुदेव दिखते हैं अगर देखते विश्व ब्रह्मांड में इसमें प्रचार कर रहा हूँ, कितने लोग महाप्रभु की धारा में आकर के भगवान का भजन कर रहे हैं, गुरुदेव इन प्रसन्न होते मेरे ऊपर में। जब गुरुदेव नित्य है, नित्य जब गुरुदेव है, तब महाराज जो महाप्रभु का जो वाणी प्रचार कर रहे हैं क्या गुरुदेव उसमें असंतुष्ट है। गुरुदेव की यही इच्छा है विश्व ब्रह्मांड कृष्ण भजन करे, इनको ये लिखा है। दूसरी जो कहते उन्होंने साधारण रूप में एक बयाद पेड़ को नीचे रखकर भजन किए, लेकिन प्रभुपाद ने बड़े ढाल वाले प्रभु उन्होंने भजन किया। फिर इसका कहते इसे प्रभुपाद ने किसने पूछा अब इतना ढाल वाले क्यों किया, कहते मेरे लिए ही तुम लोगों के लिए, अगर मैं एक पेड़ को नीचे भजन कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं पेड़ को नीचे रख जाता तो तुम लोग इतने भक्त मेरे पास नहीं आते। उसी तरह हमारा जो गुरुवर्ग है इतना विशाल मंदिर स्थापन कर रहे हैं, तत्व तो वो अपना लिए नहीं किया, वो तत्व तो हम जैसे अनधिकारी व्यक्तियों के लिए उन्होंने कैसे धीरे धीरे सुकृति को अर्जन करते हुए बल्कि उनको भी सुकृति को अर्जन करते हुए कैसे हमें बड़े भगवत भजन अधिकार हो, ये गुरुवर्ग का विशेष है। गौरक्षर महाराज ने कहा था मैं शरीर छोड़ने का बाद मेरे शरीर में प्यार नहीं, रसी बांध करके संपूर्ण नवद्वीप में घिसड़ते हुए मेरे शरीर को फेंक देना, उनको ये आदेश था। क्यों, कम से कम ये नवद्वीप का जो रज है मेरे शरीर को स्पर्श करेगा। इसलिए जिस समय गौरक्षरदास महाराज शरीर छोड़े, साधारण बाबा जी लोग उनको भाव नहीं समझ पा रहे, और साधारण बाबा जी लोगों ने देखा अगर ये शरीर को अगर हम समाज देंगे, सिद्ध बाबा जी महाराज थे, कम से कम लोग आए कुछ ना कुछ तो प्रणाम करेंगे, प्रणाम तो हमको मिलेगा इसी लोग से। लेकिन केवल इनका एक ही शिष्य था, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के लोग कोई शिष्य थे ही नहीं, और दूसरे दूसरे बाबा जी लोग आगे वहां पर बड़े झगड़ा करने लगे, नहीं हम गौरक्षरदास बाबा जी महाराज का शिष्य हम समाज लेंगे। ये बात प्रभुपाद को कान में पहुंचा, गौरक्षरदास बाबा जी महाराज शरीर छोड़े, इतने में प्रभुपाद को शिष्य वर्गों को लेकर के आए, आगे वहां पर बड़े पुलिस लोग आ गए, झगड़ा हो रहा था कौन इनका शरीर को समाज देगा। प्रभुपाद ने जाकर के बोले ये थे जो बयार की केवल इनका शिष्य के बल में अदल आई, ये इनका अदल में कोई इनका शिष्य नहीं। तो वहां पर बड़े बड़े पुलिस अफसर ने इसका प्रमाण दिया है, कहते प्रमाण ही त्यागी बयार है और मैं भी त्यागी संन्यास हूं, इसलिए इनका शरीर अपराधित शरीर, अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ एक साल के अंदर में ये जो बाबा जी लोग बोल रहे हैं हम इनका शिष्य है, अगर एक साल के अंदर में कोई अगर स्त्री साल नहीं किया है वो आगे इनका शरीर को स्पर्श करे, अगर स्पर्श करेगा तो कभी इनका शरीर अपराधित शरीर स्पर्श करेगा तो यही पर जल घूम करके मर जाएगा यहाँ पर। इतना बोलते ही जो बाबा जी लोग थे ना वहां से मेरे खिसकने लगे थे पीछे पीछे। उसको बाद में 6 महीना के अंदर में कोई नहीं किया, 1 महीना में कहते 7 दिन का अंदर में 70 लाख तक अगर किसी ने स्त्री का मरण तक नहीं किया वो आगे के इनका शरीर को स्पर्श करे। इतना बोलते ही देखा एकदम मैदान खाली, कोई बाबा नहीं समझे सब भागे वहां से। वो पुलिस लोग बड़े प्रभावित हुए लोग बाद में उधर में, पर उसने जो बोला था मेरे पैर में रस्सी बांध कर संपूर्ण नवद्वीप में घिसट कर जो फेंकना, प्रभुपाद ने कहा जिस समय हरिदास ठाकुर ने शरीर त्याग किया महाप्रभु स्वयं से क्या दिया, महाप्रभु वैष्णव का शरीर अपराध करे रहे महाप्रभु स्वयं उसको गोद में लेकर के महाप्रभु स्वयं सम्मान करते हैं। एक वैष्णव शरीर को कैसे सम्मान करनी चाहिए महाप्रभु ने सिखा दिया। और ये अपना निश्चित चिंता व अपना दीन दीनी होने का नाते वैष्णव लोग बोले मेरे को संपूर्ण नवद्वीप में घिसट कर फेंकना, ये वैष्णव का दीनता है। वो तो संपूर्ण ब्रज रज में नवद्वीप रज में कर करने रमे हुए ही कह रहे, इसलिए इस शरीर को प्रभुपाद स्वयं त्याग करके उन्होंने समाधि दिया। इसलिए
But he told you, you know,
I can hear all of it.
So you should do.
and the uncleanliness and so much dust.
But Srila Gauri Kishore Das Babaji Maharaj was living in the actual transcendental realm. His body was fully spiritual, a prakrita. And Srila Gauri Kishore Das Babaji Maharaj was immersed in transcendental vipralamba ras, in his pranam mantra. It is said, vipralamba rasambhudhe, that he was an ocean of separation moods, always constantly moving here and there in Sri Vrindavana, in Sri Navadvipa, sometimes in Sri Purika, and always remembering the eternal pastimes of Radha and Krishna and feeling intense separation mood, just like the Goswamis, as we hear in Sri Srinivasa Charja's prayer, how they were expressing their moods of separation, calling out, Hey Radhe, Raja Devi K, Oh Radhe, Oh Sri Lalita Devi, where are you, where are you? In the same way, Sri Gauri Kishore Das Babaji Maharaj used to call out, Oh Radhe, Radhe, Prana Rako, Radhe, Radhe, please save my life. I'm drowning in an ocean of separation. So in this way, by his internal moods, he was fully immersed day and night in the transcendental eternal pastimes of Radha and Krishna. But externally, just like Srila Raghunath Das Goswami, he also exhibited intense renunciation. This renunciation of Srila Raghunath Das Goswami is considered the highest. No one can imitate this. It was compared to the lines on a stone. You cannot erase that at all. So deeply embedded. So in the same way, Srila Gauri Kishore Das Babaji Maharaj's renunciation was perfectly natural. It was not something that he was forced, but he was completely detached from this world and even disgusted with the external material world. So much so that he completely withdrew himself, as we heard Srila Gurudev mention, that he was so tired of the materialistic persons and the Sahajiyas and so many imitationists who were there at that time, that he locked himself away in a latrine, in a schoolroom. But he was not living in a schoolroom. He was living in the transcendental Navadvipa. He had no perception of the external unpleasantry of that place. But he was completely absorbed in transcendental prema ras. But to the external eyes of the materialists, they used to come. They understood that Gauri Kishore Das Babaji Maharaj was a very advanced, elevated divine personality. So they wanted to come to him, and they wanted to get so many different blessings for their material life. This is the problem. In the material world, everyone is filled with anyabhilash. They have so many other desires, other than the pure motivation to do pure Shuddha Bhakti and please the transcendental senses of Krishna. But everybody is absorbed day and night, how I can satisfy my senses. So, unfortunately, they make the mistake that when they come to a divine personality, they also ask for blessings. They want mercy. But what kind of mercy do they want? Only they want cheating mercy. That they will be blessed with some material benefits. Oh, please give me good sons, please give me wealth, please give me all these assets of the material world. But they don't actually want the true blessings of the sadhu. So in Srila Gauri Kishore Das Babaji Maharaj's manifest pastimes, there are many different situations where persons came to him to ask for blessings. Just like we heard, one person came and he informed Srila Gauri Kishore Das Babaji that, oh, I now have become married to a new wife, and she is a Krishna Dasi. So he wanted to informed Gauri Kishore Das Babaji that, oh, now I will lead a devotional life, I will have this new wife, we will perform service to Krishna together. So he informed that I have become married to a Krishna Dasi, a servant of Krishna. But Srila Gauri Kishore Das Babaji Maharaj, when he heard him tell that, he said, oh, you have married a Krishna Dasi? Oh, then you will have to be very, very careful that you do not try to enjoy this Krishna Dasi. Her existence is meant for the pleasure of Krishna.
She is a Krishna Dasi. You must perform arati and puja to her. You must serve her and never try to enjoy her. In this way, this person was shocked because he thought, oh, now I'm entering into a so-called religious life and I will live and enjoy my senses. In this way, the materialistic persons think that they will cheat the sadhu. But that is impossible, because the sadhu knows every single little material desire lurking deep within the hearts of everyone. And his business is actually to expose this, so that we can understand that we are cheating our own selves. So what is their mercy? Their mercy is that, by harsh words, they cut the false ego of the conditioned soul. Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he also told that the sadhu, he takes the knife of, sacrificial knife of harsh words, his great mercy. And just like in a sacrifice, the goat, his head is cut off. So this represents the false ego of the disciple. So he raises the sacrificial knife and with great mercy, he cuts the false ego of the conditioned soul. So Srila Gaurakishore Babaji Maharaj, he never was able to be cheated by anyone. Once there was a Babaji who came to him.
And he told him,
oh, I want to live. I want to live in Navadvip Dham. So I have approached this one queen who is a land owner in Navadvip of some land. So I have purchased a small piece of land and there I want to erect a hut there. Srila Gaurakishore Das Babaji said to him, you have this queen as a land owner in Navadvip Dham, and she is able to sell some land. You are able to purchase some land from her of Navadvip Dham. He said, that is not possible, because even if one takes all the wealth, all the jewels, all the opulence of the entire universe, it will not be sufficient to purchase one dust particle of Sri Navadvip Dham. So how is it possible that you are able to purchase some land in Navadvip Dham? Oh, you must not try to think like this. Just you must come and serve Navadvip Dham. So like this, so many different examples. And Srila Gaurakishore Das Babaji Maharaj, he was so absorbed in the holy Dham, as Srila Gurudev said, that, and his renunciation was so severe, he didn't want to serve his material body, although he had no material body. But he thought like this out of deep humility, that he used to only take blood from the banks of the Ganga, and therefore he became blind. But this blindness did not impede his transcendental vision of the Dham. There's an example that one time, in Navadvip Dham at that time, it was very dense, thick forest. It was practically impossible. There were no boats even to cross from one side of the Ganga to the other. And especially in the middle of the night, impossible, no light to make one's way through the thick forest. But Srila Gaurakishore Das Babaji was living on one side of the Ganga in Kuliagram. And Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was living on the other side. And one day, one evening, Srila Gaurakishore Das Babaji Maharaj arrived in the middle of the dark, early morning hours. And when he came there, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, at that time, who was his disciple actually, he said, oh, Babaji Maharaj of Gurudev, how are you able to come here? In the middle of the night, there are no boats. Is it possible to cross? And then Srila Gaurakishore Das Babaji just told, oh, someone has brought me. And he told, but who has brought? How is it possible that someone has brought you? And he just simply smiled at him. Because actually, Sri Krishna himself brought him across the river like this. So Gaurakishore Das Babaji Maharaj, he used to come and he used to associate with Srila Bhaktivinoda Thakur. Although Srila Bhaktivinoda Thakur externally appeared like a Grihastha Bhakta, but actually he was the topmost Paramahansa Mahabhagavat. And he used to give Bhagavad Gita. So Srila Gaurakishore Das Babaji Maharaj, he loved to hear his Bhagavad Gita. And he used to come there very often. But one time, Srila Gaurakishore Maharaj came there and he was dressed, although he used to wear just the torn cloth lying on the banks of the Ganga. But this time he came there dressed very opulently, with a very beautiful dhoti, with decorative borders, and very nice shawl, walking with a cane. And Srila Bhaktivinoda Thakur, oh, Babaji Maharaj, you have appeared in a very peculiar way today. Please explain to me, what is the reason for this? Srila Bhaktivinoda Maharaj told to him, oh, nowadays we see that those who are trying to imitate Srila Raghunath Das Goswami and his renunciation, they are all pretenders, they are all imitationists. So many Babaji's, they are claiming to be renunciates, but they are keeping secretly, they are keeping women, and they are enjoying so much sense gratifications. So I am disgusted that they are misrepresenting the dress of our Goswami, this dress of the renunciates. So therefore, now I think that it is better that I will take this dress, and that I will not be like them, and I will not become like them. So in this way, Srila Gaurakishoradas Babaji Maharaj, he so many pastimes, we'll hear more from Srila Gurudev and the other Vaishnavas this evening. We are so fortunate that on this Ekadasi day, the first day of Bhishma Pancham, we get to remember our divine Arampara Gurudev, Srila Gaurakishoradas Goswami Maharaj, and purify our hearts.
बिकाल बेला शाम को फिर हम लोग 5 बजे से पहले बैठेंगे और बहुत वक्ता है उनके चरणों में पुष्पांजलि के दिन। अभी हम लोग उनके चरणों में वहाँ पर आरती और पुष्पांजलि देंगे, वहाँ पर चलिए सब।
हरे कृष्णा, कोई बार वहाँ के इंस्टीट्यूशन एक रजिस्टर करने में विधान तो आपका एक बार की है, कोई बार वहाँ के इंस्टीट्यूशन रजिस्टर करने में विधान तो आपका एक बार की है, कोई बार वहाँ के इंस्टीट्यूशन
परिक्रमा में जाऊंगा इसके बाद, आपकी आज्ञा से परिक्रमा में जाऊं जी।
राजीव भाभी हमें आपको बुला रहा है।